تفسیر اللہ رب العزت جو ہیں بڑے خوبصورت انداز میں بات کا آغاز کرتے ہیں اور بات کیا ہے، الم ترى الى الذين يجادلون في آیات اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ تو یہ استفہامیہ انداز جو ہے یہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی عادت نہیں دیکھی، ان لوگوں کی حالت نہیں دیکھی؟ الذین، وہ لوگ، یجادلون فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مجادلہ جو ہے اس کے کیا معنی ہے، جھگڑنا اور گفتگو میں دوسرے پر غالب ہونے کے لیے جھگڑا کرنا تاکہ دوسرے پر غلبہ ہو جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پہ جھگڑا کرتے ہیں. ذرا سوچے تو صحیح، ذرا غور تو کریں کہ اللہ کی آیات جو ہیں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، پھر پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے بھیجی، رسول اللہ کو وحی کے ذریعے آیات سے نوازا، قرآن سے نوازا، اور اہل مکہ کیا کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. انا یصرفون، اور یہاں پہ تنبیہ کا انداز ہے، سوچنے سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اظہار افسوس کر رہے ہیں ان کے جھگڑوں پر، ان کی فرقہ بندی پر، کہ کہاں، کیوں کر یہ پھیرے جاتے ہیں، انا کدھر، کہاں یہ لوگ جو ہیں پھیرے جاتے ہیں. تو آپ کو یہ بات بھی پتا ہے کہ صرفہ جو ہے موڑ دینا، رخ پھیر دینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور رخ پھیرنے کے لیے کتنے لفظ آئے ہیں، 6 قرآن میں، اور یہ اس کا دوسرا درجہ ہے. اس کا لفظ یہی ہے نا، رخ پھیرنا، موڑ دینا، لیکن کیسے، اصل جگہ سے اس کا رخ موڑ دینا، لیکن یہاں پہ یہ ہے محض رخ موڑ دینا، محض اس کو موڑ دینا. تو ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں نا، یا مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی دینک، تو اللہ یا رخوں کو پھیرنے والا نا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا رخ ہی موڑ دیتے ہیں. کیسے موڑتے ہیں، کہ قرآن کی آیات میں سے شبہات نکالتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور مطلب نکال لیتے ہیں اپنی مرضی کے. تو یہ ہے انا یصرفون. تو یہ مصرف کون ہے، الذین کذبوا بالکتاب، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو. تو اب یہ نہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا، بلکہ کیا ہے، جھٹلایا. اور آپ دیکھ لیں کہ جھوٹ کتنی سخت اور بری بیماری ہے، کہ انہوں نے جھٹلایا بالکتابی، کتاب کو. اور کتاب لفظ بھی اس جنس ہوتا ہے، اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور اس سے مراد جو ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ پچھلی تمام کتابوں کا نچوڑ ہے، ام الکتاب ہے. تو انہوں نے قرآن کو جھٹلایا تو پچھلی کتابوں کو بھی جھٹلایا. تو افسوس کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ کتاب کو جھٹلا دیا، اور یہاں قرآن مراد ہے. وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا، اور بھیجا ہم نے اس کے ساتھ اپنے رسولوں کو، کہ ہر دور میں ہم جب کتاب نازل کرتے تو ساتھ رسولوں کو بھی بھیجتے تاکہ رسول جو ہیں وہ ان کو سمجھائیں. لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ یہ کتاب تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. جیسے بعض اسٹوڈنٹ کہتے ہیں نا، تھیوری تھی، پریکٹیکل تو ٹیچر نے کر کے نہیں دکھایا تو سمجھ کیسے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول بھیجے. رسول واحد ہے اور رسول اس کی جمع ہے، اور کتاب کا واحد کیا ہے، کتاب ہی واحد ہے، تو جمع کیا ہے پھر اس کا، کتب. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب ان کو پتا چل جائے گا. ایک ہوتا ہے سا اور ایک ہوتا ہے سوفا، تو یہاں پہ سوفا ہے. تو سا کے معنی بھی قریب کے ہیں، اور سوفا کے بھی، دونوں میں فرق کیا ہے، ایک ہے، ایک مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، ایک مستقبل بعید کے لیے آتا ہے. تو سا جو ہے وہ مستقبل قریب کے لیے، اور سوفا مستقبل بعید کے لیے. تو جلدی ان کو پتا چل جائے گا کتاب اور رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے، یا تو دنیا میں ہی کوئی سزا آئے گی، اور یا پھر آخرت میں سزا ان کا انتظار کر رہی ہے. فسوف یعلمون، اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے آخرت کا. کیسے پتا چل رہا ہے، اگلی آیت کو دیکھیں، اذ الاغلال، کہ جب زنجیریں. اغلال پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں، اس کا واحد کیا ہے، غل، غل اس کا واحد ہے. और जमा इसकी अगलाल भी है, एक और जमा भी है, गुलूल, गुलूल। और गुल, गुल हर वो चीज जिससे किसी के अजा को जकड़ा जा सके या अजा को जकड़कर वस्त्र में बांध दिया जाए, हथकड़ी, बेड़ियां, तौक वगैरह, उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और ये लफ्ज जो है हिस्सी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और मानवी तौर पर भी। तो मानवी क्या होता है कि दिल के अंदर जो गुल होता है, हसद, कीना, कदूरत, जब दिल में हसद होता है तो दिल को जकड़ लेती है हसद की बीमारी, फिर इंसान किसी को नेमते मिलती हुई देखता है खुश नहीं होता, हसद करना शुरू करता है। जब दिल के अंदर कीना और कदूरत होती है तो अपने बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब को अल्लाह जब नवाजता है, इनामात देता है, तो फिर क्या होता है कि वो ऐसा शख्स होता है जैसे कि उसको जकड़ लिया गया है, फिर वो क्या करता है कि उनको तोहफा, इनाम नहीं देना जाता, उनको जो है वो मुबारकबाद नहीं देना जाता, उनकी खुशियों को शेयर नहीं करना जाता, चेहरे से भी वो नजर आता है कि मतलब मेरे नंबर आने से या मेरे पास होने से ये खुश नहीं हो रहा, या मेरे बच्चों को अच्छी जॉब मिल गई और इसके बच्चे को नहीं मिली तो खुश नहीं हो रहा। तो गिल दिल को भी रोक देता है और उसके साथ ही जाहिरी तौर पर क्या मुराद है, जैसे किसी को हथकड़ी लगाकर बांध दिया जाए, बेड़ियां डाल दी जाए, जंजीरें, टॉक डाल दिए जाए, तो इजिल अगलालूफी अनाक हम, इनकी गर्दनों में। तो अनाक जो है इसका वाहिद क्या है, उनुक, उनुक वाहिद है और अनाक उसकी जमा है और गर्दन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। वस सलासिल, और सलासिल जो है ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसका वाहिद क्या है, सिलसिलातुन, और रूट है सीन लाम लाम, मानी होते हैं एक चीज से दूसरी को खींच लेना, नयाम से तलवार को निकालना, सौंतना, इसी से सिलसिला है कि जंजीर जिसकी एक कड़ी से दूसरी कड़ी निकली चली जाती है या जुड़ती भी है तो जंजीर बनती है और आप निकालती चली जाएं, तो इसी तरह सिलसिला कि मेरा उससे सिलसिला ये बन गया, है ना, रिश्तेदारी ने कड़ी मिला दी और फिर शादी हुई और फिर एक रिश्ता बन गया, तो बहरहाल सिलसिला एक चल पड़ता है। तो सलासिल का लफ्ज भी आता है जंजीरों के लिए, तो अगलाल भी जंजीरों के लिए है, सलासिल भी जंजीरों के लिए है। तो इनमें जो है क्या फर्क है कि सलासिल जो है ये पहला दर्जा है और अल अगलाल जो है ये दूसरा दर्जा है, ठीक है। युसहबून, सीनहाबा, सीनहाबा के लफ्जी मानी होते हैं घसीटना, और ये लफ्ज आप पहले पढ़ चुकी हैं, बादल, सहाब, बादलों के लिए भी पढ़ चुकी हैं। याद रखिएगा सहब के अंदर दो मानी पाए जाते हैं, खास बात है, और वो क्या है, नंबर एक खींच कर ले जाना, जैसे बादलों को हवा खींच कर चलती है, नंबर दो और खुद उनका घिसड़ता चले जाना, एक तो उनको खींच कर ले जाना और दूसरा ये कि उनका खींचते चले जाना, खुद इस तरह से आगे बढ़ना जैसे कि घिसटते चले जा रहे हैं। अब यहां पे बात हो रही है युसहबून की, और युसहबून के मानी क्या है, देखें मसलन अब जो है ये टेबल है और ये है भारी, ठीक है, आप इसको ले जाना चाहती हैं तो आप क्या करती हैं कि आप जो है वो इसको खींचना शुरू कर देती हैं, खींचना, तो एक चीज जो खड़ी होती है ना उसको आप खींचते हैं, एक चीज जो गिरी हुई होती है ना उसको आप घसीटते हैं। आप ये बात नोट करें कि खींचने में और घसीटने में फर्क है, यहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि उनको खींचा जाएगा, बल्कि क्या कहा जा रहा है कि उनको घसीटा जाएगा। घिसटने, ये जो सहाबा है ना, इसमें घिसटने का पहलू नुमाया है और खींचने का कम। जैसे मसलन अब कैसे उनको घसीटा जाएगा, मसलन एक इंसान है वो पांव के बल खड़ा हुआ है तो आप उसको खींच दी हैं, अब घसीटेगी कैसे, गिरा हुआ है वो शख्स, मुंह के बल गिरा हुआ है, अब वो चल तो सकता नहीं है कि कुछ वो चल रहा है और कुछ आप उसको खींच रही हैं, अब क्या है कि उसे जो है वो घसीटा जाएगा। आपको पता है ना कयामत के दिन जहन्नमियों को जो है वो कहां से चलाया जाएगा, चेहरे के बल उनको चलाया जाएगा, चेहरे के बल उनको घसीटा जाएगा। तो ये बात जो है हमें कुरान में भी पता चलती है और मुफस्सरीन ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो बताया गया कि युसहबून, तो इसके मानी ये हैं कि वो जैसे कोई गिरी पड़ी चीज जो है ना, तो उसको घसीटा जाता है। तो अब वहां पे इंसान खड़े थोड़ी होंगे, जहन्नुम के अंदर हैं और उसके अजाब में हैं, गिरे पड़े हैं, जल रहे हैं, तो अब क्या किया जाएगा कि उनको जो है वो घसीटा जाएगा, घसीटा जाएगा। और आप देख लीजिए कि ये वो बात है जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बार बार जो है वो बयान करते हैं, और बयान करने का अल्लाह का अंदाज इतना सख्त है। आप सूरत मुल्क आयत 22 की दलील निकालें इसके लिए। अफा मैं यमशी मुकिबन अला वजह ही, अच्छा वो शख्स जो चलता है अपने मुंह के बल ओंधा होकर, आधा ज्यादा हदायत वाला है, अम्मा यमशी सवीयन अला सिरातिन मुस्तकीम, या वो जो सीधा पैरों के बल राह रास्त पर चलता है। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि एक शख्स है चेहरे के बल चलने वाला और एक है पांव के बल चलने वाला। तो ये जो युसरफून थे और ये जो युफकून है, युफकून तो सारी जिंदगी तो दुनिया में उल्टे ही चलते रहे, अब कयामत के दिन भी उनको उल्टा जहन्नुम के अंदर डाला जाएगा। सूरत बनी इसराइल आयत 97 दलील है, वरना शुरुहुम यौमल कयामती अला वजूहिहिम, हम इन्हें कयामत के दिन मुंह के बल इकट्ठा करेंगे, घसीटेंगे। खड़े तो होंगे नहीं कि इनको खींचा जाए, बल्कि क्या है, इनको घसीटा जाएगा। और एक बात याद रखें कि जब अगलाल आ गया था तो सलासिल क्यों आया? मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अगलाल आया है गर्दनों के लिए, चेहरे के लिए, और सलासिल जो है ये पांव के लिए आया है। फी अर्जुलहिम के अल्फाज यहाँ पे महजूफ हैं, छुपे हुए हैं, कि चेहरे में, चेहरों में तो अगलाल डाल दी जाएंगी, वो भी जंजीरें हैं, और जो पांव हैं उनमें भी बेड़ियां डाली जाएंगी। तो जब किसी के गर्दनों में तौक डाल दिए जाएं और पांव में जंजीरें पहना दी जाएं, तो अब इसके बाद क्या है, युसहबून, और अब उनको घसीटा जा रहा है कहां पे, गर्म पानी की तरफ, क्योंकि वो दोजख में झोंक दिए जाएंगे। क्या कहा, फिल हमीम, आपको पता है हामीम इंतहाई जो गर्म पानी होता है, जो नुक्ता उरूज पर होता है वो ज्यादा गर्म, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जिसके अंदर हर चीज फिर गल जाती है। अब आप सोचिए तो सही, तसव्वुर तो करें कि अब उनको घसीटा जा रहा है हमीम की तरफ, और हमीम की तरफ गर्म पानी की तरफ जब उनको घसीटा जा रहा है, सुम्मा फिन्नारी युसजरून, फिर आग में उनको जो है वो भर दिया जाएगा, आग की तरफ इन इंसानों को जो है वो भर दिया जाएगा। ये गोया कि जहन्नुम में इनको भर दिया जाएगा, और जब इनको भरा जाएगा तो जहन्नुम में एक कलातुम पैदा हो जाएगा, जहन्नुम के अंदर एक इस्तराब पैदा होगा, जोश में होगी जहन्नुम, बड़ी शिद्दत से वो भड़केगी। फिर सब जैसे समंदर का जोश देखें और तनूर का जोश देखें, तो अब क्या है कि जहन्नुम का जोश तो देखें, कि ये हैं वो लोग जो मुशरिक थे, जो कज़्ज़ाब थे, जो जो है वो युफकून और जो यजहदून, ये सिफात के इनके अंदर थी। तो याद रखिएगा, आप अगर समझना चाहती हैं ना कुरान को, जब तक अल्फाज की गहराई समझ में नहीं आएगी, लुगत के एतबार से समझ में नहीं आएगा, कुरान समझ में नहीं आता, ठीक है? तो कुरान की तफसीर के लिए क्या जरूरी है, अंदर जाना, गहराई में जाना। तो हमीम है खोलता हुआ पानी। अब मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अब उनको, आप सोचे उनके ऊपर जो है गर्दन में अगलाल हैं, पांव में सलासिल हैं, और वो घसीटे जा रहे हैं, और उसके बाद उनको जो है वो हमीम में डाला जाएगा, पहले हमीम में डाला जाएगा गर्म पानी में। अब हमीम के बाद जो है फिर क्या होगा कि वहां से उनको जो है वो नार में डाला जाएगा, तुम फिन नार, नार यानी आग ही आग है, इंतहाई आग, गर्म। अब फिर क्या है कि बाज ये कहते हैं कि ये जो हमीम है ना, ये जहन्नुम से बाहर है, जहन्नुम के अंदर सब सजाएं हैं, तो हमीम के अंदर फिर उनको दाखिल कर दिया गया। बाज ये कहते हैं कि नहीं, हमीम तो जहन्नुम के अंदर ही है, पास ही कहीं, जैसे मुख्तलिफ किसी चीज के दर्जे नहीं होते। तो गौर करें तो क्या बात है कि वाजे करने के लिए चीज को मुमताज करने के लिए अल्लाह ने इसको अलग बयान किया है, तो ये भी जहन्नुम का एक तबका है जहां पे जो है वो अहले जहन्नुम जजीरों में जकड़े हुए खींच कर लाए जाएंगे और हमीम में डाले जाएंगे। मसलन कुरान में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हाजी जहन्नमुल्लती युकज्जिबू बिहा المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن। तो क्या पता चल रहा है इस आयत से कि हमीम जो है ये भी जहन्नुम के अंदर है। तो इस आयत से क्या पता चल रहा है कि वो बाहर है। तो बहरहाल एक ही बात है, जैसे कभी किसी बात को ज्यादा वाजे करने के लिए उसकी शिद्दत को उसको अलग से फिर बयान किया जाए, फिर आग के अंदर जो है उनको डाल दिया जाएगा, तो आग में दोजक की आग में उनको झोंक दिया जाएगा। और मुफस्सरीन जो है ये कहते हैं कि प्यास की शिद्दत से ये लोग मजबूर हैं, जहन्नमी गर्म आग में जब जल रहे हैं, सख्त उनको प्यास लगी है, अब वो मांग रहे हैं पानी। वो फरिश्तों से कहते हैं कि थोड़ा सा पानी हमें पिला दो, थोड़ा सा पानी हम पे डाल दो। अब फरिश्ते क्या करते हैं, जंजीरों से खींचते हुए घसीटते हुए उनको ऐसे चश्मों की तरफ ले जाएंगे जो कि हमीम के चश्मे होंगे। अब वो जहां जब वहां से फारिग होंगे, अब फिर घसीटते हुए उनको जो है वो दोजक की आग में झोंक देंगे, सुम्मा फिन्नारी युसजरून। और जब उनको दोजक की आग के अंदर झोंक दिया जाएगा तो फिर क्या होगा कि दोजक की आग में जाते ही आग भड़क उठेगी, गोया कि ये ईंधन का काम देंगे, पहले भी ईंधन है और ये खुद ईंधन बन जाएंगे। सुम्मा कील लहुम, फिर इनसे कहा जाएगा ऐनमा कुंतुम तुशरिकून, फिर उनसे पूछा जाएगा कि अब कहां हैं वो जिनको तुम शरीक किया करते थे, अब तुम्हारे वो खुदा कहां हैं जिनकी उम्मीद पर तुम उनकी इबादत किया करते थे। तुम तो कहते थे कि बुरे वक्त में वो तुम्हारे काम आएंगे, तो अब वो तुम्हारे काम क्यों नहीं आते, अब वो कहां चले गए। अब आप देखें कि ये सवाल है जो फरिश्ते उनसे पूछ रहे हैं, अब वो इतने बदहवास हैं, वो इतने परेशान हैं कि एक सवाल के मुख्तलिफ जवाब देंगे। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, ऐनमा कुंतुम तुशरिकून मिन दूनिल्लाह, अगली आयत को भी आप साथ मिला लीजिए, तो मिन दूनिल्लाह के मानी क्या है कि अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पूजा करते थे, जिनसे लॉ लगा के बैठे थे, जिनको वकील बनाया था, जिनको मुश्किल कुशा और कारसाज समझते थे, अब वो कहां चले गए। फालू, उनकी बदहवासी का हाल देखें, वो कहेंगे दल्लू अन्ना, बल्कि वो हमसे गुम हो गए। तो अब इसके मानी क्या है दल्लू अन्ना के, इसके मानी ये हैं कि वो ये कहेंगे कि आपको पता ही है, मैंने बताया था कि दलल के दो मानी होते हैं, एक जो है किसी चीज का गुम हो जाना और एक होता है गुमराह होना। अब यहां पे वो ये कहेंगे कि हमें तो कुछ याद ही नहीं पड़ता कि वो भी कहीं है, अब तो वो हमसे गुम हो गए हैं। एक मानी तो ये, कहीं नजर नहीं आ रहे, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहां गए वो हमारे शरीक। दूसरे मानी ये भी हैं कि हमारी तो याद से ही महव हो गए, गल्लू अन्ना, हमें तो याद भी नहीं कि हम किसकी पैरवी करते थे, इतना शदीद अदाब होगा कि वो कहेंगे कि हमारी तो याद से ही वो महव हो गए। आप देखें जब कभी जिंदगी में मुश्किल आती है, दोस्त बहुत से होते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कोई याद नहीं आता। आप एक दिन के अंदर बहुत से रंग देखती हैं, बहुत से लोगों को देखती हैं, बहुत से उन्होंने कपड़े पहने हैं, हर कपड़े का मुख्तलिफ रंग है, लेकिन आप शाम में बिस्तर पर बैठ के याद करें कितने रंग आपको याद रहते हैं, है ना। आप बहुत से इंसान देखती हैं, कितने इंसानों की शक्ल याद रहती है, आप बाहर निकलती हैं, मॉल में जाती हैं, है ना ये बात। तो इंसान देखता बहुत कुछ है, सुनता बहुत कुछ है, आप बातें बहुत सी सुनती हैं, तरह तरह की बातें सुनती हैं, लेकिन कौन सी याद रहती है, सिर्फ वही याद रहती है ना जो इंसान ने तवज्जो से की हो, जिस पर तवज्जो दी हो, या ये कि जिससे इंसान को कुछ उम्मीद हो, कोई फायदा हो। अब यहां पे कुछ भी नहीं है, कहेंगे दल्लू अन्ना, बल्कि वो तो हमसे गुम ही हो गए। बल लम नकुन नदऊ मिन कब्लु शैहा, अब बदहवासी का हाल ये है, अब एक और जवाब देंगे। पहले तो ये कि नहीं नहीं याद ही कुछ नहीं, हमें तो याद ही नहीं कि हमने किसी की पूजा की थी, और हम किसी को पुकारा करते थे, कहीं नजर नहीं आते वो, तो अब दूसरी बात क्या कहेंगे, मुकर जाएंगे, कहेंगे बल्लम नकुन नदू मिन कबलू शैया, कि इससे पहले तो हम किसी की इबादत किया ही नहीं करते थे, साफ मुकर जाएंगे। जैसे कुरान में आता है ना, वो कहेंगे वल्लाही रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, सूरत अलनाम आयत 23, कसम खा के कहेंगे अल्लाह की कसम हम तो किसी को शरीक ठहराते ही नहीं थे। तो अब क्या है कि बुतों के वजूद और इबादत का क्या करेंगे, इनकार कर देंगे कि हम तो किसी की इबादत करते ही नहीं थे। और हमें ये जवाब भी उनका याद है, आपको पता होगा पीछे भी आपने पढ़ा था कि वो इबादत करने वाले अपने माबूदों पर इल्जाम लगाएंगे कि या अल्लाह हमारे बुजुर्गों ने हमें गुमराह किया था, इन्हें दुगना अजाब दे। अजीब कैफियत के अंदर है, अजीब परेशानी का हाल है, बदहवासी का। कभी तो कहते हैं हमने तो कभी किया ही नहीं था, कभी तो कहते हैं कि वो तो नजर ही नहीं आते कहीं भी, अब हमें नजर ही नहीं आ रहे, पता नहीं याद ही नहीं आ रहा, कहीं दिखते नहीं है हमें, अब हमारी मदद के लिए आ ही नहीं रहे, और कहीं नजर आ जाए तो कहते हैं कि नहीं इनको भी अब दुगना अजाब दे। तो मुख्तलिफ कैफियात है जिनका अल्लाह ताला यहाँ पे जो है वो जिक्र करते हैं, और इसके मानी ये हैं कि अब उनको समझ आ गई कि जो कुछ हम दुनिया में करते थे उसकी कुछ भी हकीकत नहीं थी। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहुल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह जो है वो क्या करता है, गुमराह किया करता है काफिरों को। तो मानी ये है कि इसी तरह अल्लाह ताला जो है काफिरों को भोल भुलैयों में डाल देता है कि वो क्या करते हैं, वो गुमराह भी हैं और उसके साथ ही वो भटके हुए भी हैं। उनको जो है अब हदायत का रास्ता तो क्या नजर आता, अब तो उनको कुछ भी नजर नहीं आता। ये क्या इसका मतलब है, इसी तरह अल्लाह काफरों को जो है वो गुमराह कर देता है, रास्ते का भूल जाना और किसी का वैसे गुमराह हो जाना। तो इसके असल में मानी ये है कि गुमराही इस बात का नतीजा है कि लोग दालीन में क्यों शामिल हुए, दलल क्यों उनके अंदर आया, तो उसकी वजह क्या है, कुफर करने की वजह क्या है, अगली आयात में बताई जा रही है, ज़ालिकुम बिमा कुंतुम तफ़रहून फिल अर्दी बिगैरिल हक़्क़ी, वजह यह है ज़ालिकुम, ये सारा अंजाम ये सारा हाल ये क्यों हुआ, बिमा कुंतुम तफ़रहून फिल अर्दी, कि तुम जमीन में फरहा किया करते थे, बिगैरिल हक़्क़ी बगैर हक के, बिमा कुंतुम तमरहून, और ये इस वजह से है कि तुम जो है वो मरहा किया करते थे, बगैर हक के जो थे वो इतराते थे, और इसके साथ ही क्या करते थे कि बेजा जो है वो डींगे मारते थे, खुश होते थे नजायज और फिर इतराते थे। तो दो लफ्ज यहाँ पे बहुत अहम है, एक है तफराहूना और दूसरा है तमराहूना, आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, और इसके मानी होते हैं खुश होना इतराना। कुरान में वैसे 9 लफ्ज आए हैं, और फरहा जो है ना इसका पहला दर्जा है, ये महमूद सिफ्त भी है और मजमूम भी है। महमूद की दलील बताएं, फबिज़ालिका फलियफ़रहू, सूरत यूनस की आयतें हैं 50 के अंदर आप ढूंढ सकती हैं। तो कुरान के हासिल करने पर लोगों को खुशियां मनानी चाहिए, इंसान दुनिया में जो कुछ जमा करता है लेकिन कुरान की दौलत ऐसी है, फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन। अच्छा ये तो है पसंदीदा सिफ्त बताई आपको फरहा की, मैंने अच्छी दलील दी। अब दूसरी दलील क्या है कि ये लफ्ज जो है इतराने तकबर करने फूले ना समाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन, ये कब पढ़ा था आपने, कारून के वाक्य में, शाबाश। तो ये दूसरी मिसाल है, इसका मतलब है कि ऐसी खुशी के नेमत के मिलने पर इंसान जो है वो आपे में ना रहे, इतराने लगे। तो इनका हाल क्या था कि जमीन में इतराते थे बगैर हक के, इससे क्या बात पता चलती है कि इनके अंदर किब्र पाया जाता था, ये किब्र की अलामत है, और याद रखिएगा किब्रियाई सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल किब्रियाउ रिदाई, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है कि किब्रिया जो है ये बड़ाई जो है ये मेरी चादर है। तो अल्लाह की खास रिदा पर जो हाथ डालने की कोशिश करता है تو پھر اللہ ان کو اتنی سخت سزا جو ہے وہ دیتا ہے. تو ہمیں کیا بات پتا چل رہی ہے کہ جہنم متکبرین سے بھر دی جائے گی. یہ پیچھے جو ذکر آ رہا ہے نا, جن کو گھسیٹا جائے گا ان کو سلاسل اغلال میں جکڑ دیا جائے گا, اور پھر ان کو جو ہے یوس جرون, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یوس حبون, یہ جو ملتی جلتی سزائیں ان کو دی جائیں گی. تو ان سب کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ کبر کرتے تھے. تو میری بہنوں, ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ کی بخشی ہوئی ہیں, یہ ہمارا ذاتی حق نہیں ہے. تو غرور اور کبر میں مبتلا ہو کر نہ اکڑیں اور نہ ہی اترائیں, کیونکہ جب انسان اکڑتا ہے اتراتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, رسولوں کو جھٹلاتا ہے, کتاب کو جھٹلاتا ہے, اللہ کو جھٹلاتا ہے, آخرت کو جھٹلاتا ہے. اسی لیے متکبر کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, بتر الحق وغمت الناس. تو وہ کیا کرتا ہے, بغیر حق کے جو ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, اور انسانوں کے حکم جو ہے وہ ادا نہیں کرتا. تو یہ جو مرہ ہے, میم رہا, یہ 9 لفظ ہے نا, میں نے بتایا خوش ہونے کے لیے آتے ہیں, لیکن مرہ جو ہے یہ اس کا تیسرا درجہ ہے. اصل میں یہ شدت الفرح کو کہتے ہیں. پیچھے آپ نے فرح پڑھا نا, تو فرح کی شدت, اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنا انسان خوش ہو کہ خوشی سے جھومنے لگے. اب جھوم کر کیا کرتا ہے, ناس سے چلتا ہے, اداؤں سے چلتا ہے, اکڑ کر چلتا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے, ایک طرف زمین میں وہ اکڑ کر چلتے تھے, اتراتے تھے, دیکھ کر پتا چلتا تھا کہ ان کے اندر غرور پایا جاتا ہے, کبر پایا جاتا ہے. اور دوسری طرف کیا تھا کہ ان کی چال کے اندر ایک مرہ آ گیا تھا. اور اس کی دلیل دیجئے, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, ہے نا. اور حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. تو اس سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ مرہ جو ہے یہ عادت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اکڑے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھے. تو کیا فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتراتے تھے. تو گویا کہ گمراہی کی وجہ کیا پتا چلی, نمبر ایک, آیت 74 کے آخر میں آپ دیکھیں, الکافرین, کافرین کفر کرنا, ہے نا. اور اس سے پہلے آپ آیتیں جو آج ہی ہم نے شروع کی ہیں, آپ بالکل سٹارٹ دیکھیں, آیت 69 میں کیا ہے, یجادلون, مجادلہ. آیت 70 میں کیا ہے, کذبو, جھٹلانا, ہے نا. کیا پتا چلا کہ جھگڑتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, جھٹلاتے ہیں. اور نمبر 3 کیا پتا چلا, کہ کفر کرتے ہیں. اور نمبر 4 کیا پتا چلا, کہ وہ کبر کی بیماری میں مبتلا ہیں. اور کبر کے بھی 2 درجے ہیں, خوش ہوتے ہیں, فرح بھی ہے, اور اس میں بھی آپے میں سے باہر ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ مزید خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مرہ کی بیماری ان کے اندر پائی جاتی ہے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, فرشتے ان سے کہیں گے داخل ہو جاؤ جہنم میں. اور ادخلوا دخلا سے ہے, ہے نا, ادخل, ادخل, ادخل واحد ہے, اور ادخلوا جمع ہے. تو تم سب داخل ہو جاؤ, ابواب, باب واحد ہے, ابواب جمع ہے, تم سب جہنم میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا, خالدین اسم فاعل ہے, اس میں ہمیشہ رہو گے, ہاں کی ضمیر جہنم کے لیے ہے. فبئس, بس کتنا برا ہے, مثوى المتکبرین, ٹھکانہ متکبروں کا, جہاں ان کو جا کر آباد ہونا ہوگا. متکبر, متکبر واحد ہے, متکبرین اس کی جمع ہے. تو اب دیکھیں فرحا اور مرحا کی کیفیت کو متکبرین میں جو ہے وہ اکٹھا کر کے سامنے رکھ دیا کہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ متکبر ہیں, اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے کہ جہنم ایسے لوگوں سے بھر دی جائے گی. یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت کرتی چلی جاؤں کہ آپ کا 23 پارے کا ایگزام ہونے والا ہے, امتحان ہونے والا ہے, اور آج کل جو امتحان ہے یہ کوئز کی شکل میں چل رہا ہے. تو تحریری امتحان بھی آپ کے ہوئے, اور اب یہ کوئز تقریری امتحان ہے. اور مقصد کیا ہے کہ آپ کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے, آپ کے اندر تقریری صلاحیت کو پیدا کیا جائے, یادداشت کو تیز کیا جائے, آپ اور زیادہ محنت کریں, آپ کو لوگوں کے درمیان بات کرنا آئے, ہے نا. تو 23 پارے کا جو کوئز ہے, اچھا ہاں, 23 پارا تو ہمارا ماشاءاللہ ہو چکا. تو चौबीसवें पारे का जो क्विज है, तो इसका एक मैं आपको छोटा सा होमवर्क दे देती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इस इम्तिहान में आप लोग भी शामिल हों। वैसे तो आप शामिल हैं ही कि आप इम्तिहान देते हैं, तो लेकिन इसमें जो है वो इम्तिहान देने का अंदाज जो है वो आपका क्या होगा कि आपने जो है ना सवाल भी बनाने हैं। नंबर एक, आपने 24वें पारे में से 12 मुश्किल लफ्ज लेने हैं, हर रुबे में से तीन और 12 मुश्किल लफ्ज आपने निकालने हैं। हर रुपए में से तीन होंगे तो 12 हो जाएंगे ना टोटल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 10 सवाल बनाने हैं, 10 सवाल बनाने हैं, और सवाल जो हैं वो अहम होने चाहिए, यूं समझ लें कि लुब होने चाहिए, खुलासा, निचोड़, बहुत अहम सवाल, मुख्तसिर होने चाहिए, टू दी पॉइंट, और 10 सवाल बनाने हैं। अच्छा, तीसरी बात, आप जो पेपर बनाएंगी ना किसी से मशवरा करना है ना किसी को दिखाना है कि मैंने तो ये किया है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। अच्छा, एक और बात, आपने जो है ना, मैंने आपको बार बार कहा कि वाहिद जमा अलग लिखा करें, आपने ना मुझे अपनी कॉपी भी दिखानी है कि ये आपने पूरे पारे के वाहिद जमा अलग लिखे हैं। तो अंदाजा आपने करना है कि कुल कितने मैंने वाहिद जमा बताए इस पारे में, और आपकी अब कोई वाहिद जमा मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले भी बताए गए, लेकिन अब मैं चाहती हूं 30वें पारे तक पहुंचते पहुंचते आप इसमें जो है वो परफेक्ट हो जाए, आपको इस पर अबूर हो जाए। परफेक्ट तो असल में अल्लाह ही की जात है, लेकिन आपको ये आ जाए। इसी इसी तरह और कोई खास बात है, कोई इस्म जिन्स है, कोई ज़वील अज़दाद में से है, या फिर एक ही लफ्ज के दो मानी है, जैसे इबादत है, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना इबादत, उसके दो मानी, एक दुआ का, एक बंदगी करना, दीन है तो उसके मुख्तलिफ मानी है। तो बहरहाल अब आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये कि अभी हमने दलील पढ़ी रात और दिन की, पिछले सबक में आपने पढ़ी, तो जाहिरी तौर पर बस आप उसका यही तर्जमा करती हैं कि रात को जो है वो अंधेरा है और बायसे सुकून है और दिन को रोशनी है और काम करते हैं, लेकिन अब आपने उसके भी मगज की तरफ आना है। दो बातें इसके अंदर बहुत जरूरी हैं कि दोनों के अंदर क्या है, एक नंबर तजाद और नंबर दो हम आहंगी, मुनासबत है एक, और कयामत की ये दलील है, तौहीद की दलील है। तो अब आप ना इस तरह से आपको समझ आनी चाहिए। तो बहरहाल तो हम पढ़ रहे थे ये सबक, क्योंकि मैं फिर वाहिद जमा इसका जिक्र करती हूँ, और मैं अब ये भी बताना शुरू कर दिया, तफसील तो नहीं बताती, लेकिन ये कि जैसे जो मुतरादिफात हैं तो उनके कितने दर्जे हैं, तो इसका कौन सा दर्जा है, तो अब तफसील तो नहीं बता रही, लेकिन दर्जा तो आपके सामने रख रही हूं ना कि ताकि आपको इसका और ज्यादा जो है वो अंदाजा हो। तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे आयत 76 में, फबेसा मसवल मुतकब्बिरीन, कि कितना बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का। अब आगे जो आयतें हैं इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो नसीहत की जा रही है, और नसीहत क्या है कि आपको जो है वो तसल्ली दी जा रही है, हौसला दिया जा रहा है। क्या कहा, फसबिर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र कीजिए, इन्ना वादल्लाही हक, बेशक अल्लाह का वादा हक है, और हक से मुराद क्या है, सच है, और वादे से मुराद अजाब का वादा है, क्योंकि अहले मक्का जो थे वो इनकार करते थे, तंग करते थे, और उसके साथ जो है वो कहते थे कि अगर हम गुनाह करते हैं तो हम पर अल्लाह का अजाब जो है वो क्यों नहीं आ जाता, वो अपनी रविश को बदल ही नहीं रहे थे। तो अब अल्लाह ताला ने यहां पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप सब्र कीजिए, आप जो है परेशान ना हो कि इनकी नाफरमानियों पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब क्यों नहीं आता, इन्ना वादल्लाही हक्कुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। अब देखें, एक तरफ इन्ना कहा, दूसरी तरफ हक, ताकीद अहमियत के लिए, फइम्मा नुरियन्नका, फिर साथ ही फरमाया कि पस अगर, फइम्मा पस अगर नुरियन्नका, हम दिखा दे तुझको, कहा कि अगर हम जो हैं हम दिखा दें तुझको, बाद अल्लाजी, कुछ उसका, अल्लाह जी वादे के लिए आया है, ये जो वादा किया ना अजाब का, इस अजाब में से कुछ हम आपको ही दिखा दें। और ये भी देखें, नुरियन्ना का नून तो हम के लिए आया ही है, और फिर नून, नूने आगे ताकीद भी है कि हम दिखा दें तुझको इस अजाब का कुछ हिस्सा, नाए दो हम जो हम आपसे वादा करते हैं। नाइद जो है ये क्या है, जवील अजदाद में से है। वैसे किसी को अच्छा वादा करना और किसी को जो है डराना भी वईद के लिए भी आता है। तो जो हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इन पर अजाब आएगा, तो हो सकता है कि हम आपकी जिंदगी ही में वो अजाब इन पर ले आए। औ नतवफ्फा यन्नका या हम आपको फौत कर दें। तो मानी क्या है, मुराद ये है कि ये भी हो सकता है कि हम जो हैं वो आपकी जिंदगी में इन पर अजाब ले आए, और ये भी हो सकता है कि आप फौत हो जाएं, तो आपकी वफात के बाद जो है अजाब का फैसला जो है वो इन पर सादिर हो जाए। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है, आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी काफिरों पर अजाब आया, मुसलमानों की आंखों को ठंडा किया गया। यौमुल फुरकान, गजवाए बदर, 70 काफिर मारे गए है ना, और मुख्तलिफ गजवात में जो काफिरों को नुकसान हुआ उसमें गजवाए अहज़ाब बेहतरीन मिसाल है। फिर क्या हुआ, 8 हिजरी में मक्का ही फतह हो गया। तो ये क्या था, ये भी तो एक अजाब था ना। और पूरा अरब जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेरे नगीन हो गया, मुसलमानों के अंडर आ गया। तो औ नतवफ्फयन्ना का या फिर ये है कि आपकी वफात के बाद भी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी आप देखें कि काफिरों को सहाबा के हाथों कितना जो है नुकसान उठाना पड़ा। फइलैना युरजाउन, और ये जो है ना आयत का हिस्सा, ये आखिरत के अजाब की तरफ इशारा है कि रहा दुनिया का अजाब, वो तो आपकी जिंदगी में या आपके बाद भी हो सकता है, मरने के बाद ये जाएंगे कहां। फइलैना युरजाउन, ये हमारी ही तरफ जो है लुटाए जाएंगे। युरजाउन जो है ये मजारे मजहूल है, तो मतलब क्या है, आखिरत में हमारे पास इनके लिए बड़ा सख्त अजाब तैयार है। फलकद अरसलना रसूलन, और तहकीक हमने भेजा रसूलों को। तो रसूल वाहिद है, रसूल जमा है, तो हमने रसूलों को रवाना किया। मिन कबली का, आपसे पहले क्या कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने जो है तुझसे पहले भी रसूलों को भेजा। मिनहुम, इनमें से यानी आपसे पहले जो रसूल भेजे, इनमें से मन कससना अलैका, जिनके किस्से हमने बयान किए, जो रसूल भेजे तो इन रसूलों में से बास के किस्से तो हमने बयान किए। किस्से अलैका, तुझसे, तो कुछ रसूलों के हाल आपको सुना दिए है ना। और आपको पता ही है कि कुरान में रसूलों का जिक्र अजमालन भी आया है और तफसीलन भी आया है ना। और कुरान मजीद में सिर्फ 25 अंबिया और रसूल का जिक्र है और उनकी कौमों के हालात हैं। वैसे तो क्या है कि जो अल्लाह ने रसूल जो हैं वो भेजे, वो तो बहुत से भेजे, भेजे जाने वालों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। वलकद अरसलना रसूलम मिन कबलिका, आपसे पहले बहुत रसूल भेजे। मिनहुम मन कससना अलैका, कि कुछ के किस्से कहानियां अहवाल तुम्हें सुना दिए। व मिनहुम मन लम नक्सुस अलैक, और कुछ के किस्से और कहानियां जो हैं वो आपको नहीं सुनाए। तो इससे क्या बात पता चलती है कि भेजे जाने वाले रसूलों की तादाद, पैगंबरों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे लफ्ज रसूल का है। मानी क्या है, मानी ये है कि रसूल जब बहुत से भेजे, उन्होंने अपनी कौमों में जब काम किया, तो अल्लाह की इजाजत से रसूल आए, अल्लाह की इजाजत से उन्होंने काम किया, लेकिन रसूल जो थे जिनके कुछ के हाल सुनाए और कुछ के नहीं सुनाए। वमा कान अले रसूल, और नहीं था किसी रसूल के लिए, अय्यातिया बि आयतिन इल्ला बि इज़्निल्लाह, कि वो ले आता कोई आयत जो है मगर अल्लाह की इजाजत से। यानी किसी रसूल के लिए ये बात जायज ही नहीं थी, किसी रसूल की कुदरत में ये बात नहीं थी कि कोई मौजा अल्लाह की इजाजत के बगैर ला सके। यहाँ पे आयत इन लफ्ज जो है ये मौजे के लिए आया है, कि रसूल जो थे वो आए तो सही, लेकिन अल्लाह की इजाजत के बगैर वो मौजा जो था वो नहीं दिखा सकते थे। और ये क्यों कहा, असल बात ये है कि अहले मक्का हिस्सी मौजे का मुतालबा कर रहे थे, और अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तो बहुत से रसूलों को भेजा है, कुछ का हाल तुम्हें सुनाया, और ऐ मोहम्मद कुछ का हाल तो तुम्हें सुनाया भी नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी कौमों ने कैसे कैसे उनसे मौजजात का मुतालबा किया, और फिर भी उन्होंने अपनी अपने रसूलों का इनकार ही किया। आप देख लीजिए जो है वो नाका का जो मौजजा था, फिर ईसा अलैहि सलाम के मौजजात, तो क्या कौम मौजजात देखने के बाद ईमान ले आई? बात क्या थी कि जब अहले मक्का मौजजात का मुतालबा किया करते तो कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में यह ख्वाहिश पैदा होती, काश के कोई मौजजा ही ऐसा दिखा दिया जाए कि इनकी गर्दनें झुक जाएं और ये ईमान ले आएं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये बात बताई कि रसूल तो बहुत से भेजे, कुछ का हाल पता है कुछ का नहीं, और गोया कि उनको मौजजात भी दिए गए, कौमों ने फिर भी इनकार किया। और किसी नबी के इख्तियार में नहीं था अपनी मर्जी से मौजजा ले आए, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी कोई मौजजा जो है अपनी मर्जी से नहीं ला सकते, कितनी ही काफिर ख्वाहिश क्यों ना करें, आपका दिल कितना ही क्यों ना चाहे, अल्लाह की इजाजत से ही होता है। फाइजा जा अमरुल्लाही, और जब आ जाता है अल्लाह का फैसला, इसके मानी क्या है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, और यहां पे हुक्म से मुराद है अजाब का फैसला, जब अल्लाह के अजाब का फैसला जो है वो आ जाए, तो कुदिया बिलहकी, तो फैसला कर दिया जाता है हक के मुताबिक। और ये फैसला कैसे होता है, कहां होता है, दुनिया में या आखिरत में? क्योंकि पीछे पड़ा ना फाइमा नुरियन्ना का बाद अल्लाजी नाइदुहुम, मजीद उसी की वजाहत है कि अल्लाह जो है वो झुटलाने वालों का फैसला करता है और उनको जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, या दुनिया में या फिर आखरत में जब उनको सजा मिलेगी। वखसिरा हुनालिकल मुब्तिलून, और उस वक्त जो है वो क्या होगा, अहले बातिल खसारे में रह जाएंगे। अपने आप को ये बड़ा कामयाब समझते हैं, उस वक्त इनका हाल ये होगा कि ये लोग जो है खसारा उठाने वालों में शामिल हो जाएंगे। फिर कोई इनके पास जो है वो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक कामयाबी की किरण हो या कोई एक उम्मीद हो या कहीं से इनको जो है वो कोई फलाह जो है वो नजर आए, तो तबाही बर्बादी इनका जो है वो मुकद्दर बन जाएगी। तो जो झुटलाने वाले हैं, जो किब्र करने वाले हैं, तो उनका क्या हाल होता है, उनके हाथ में आती है जिल्लत और खुसरान, और पैगंबरों के हाथ में क्या आती है, फलाह, फलाह और कामयाबी, और ईमान लाने वालों के हाथ में भी। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तसल्ली देकर, और तसल्ली का खास पहलू रखने के बाद कि पहली कौमों ने भी अंबिया के पास मौजज़े देखने के बाद भी झुटलाया और तबाही उनका मुकद्दर बनी, अब फिर अल्लाह ताला रबूबियत की निशानियों की तरफ इशारा करते हैं, मतवज्जो करते हैं कि ए लोगो जरा सोचो तो सही, अल्लाहुल्लज़ी जअला लकुमुल अनआमा, अल्लाह तो वो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए अनआम को, अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या किया, मवेशियों को बनाया। और आप देखें कि ये जो अनआम है ये किसे कहते हैं, चार जानवर है ना जिन्हें कहा जाता है, भेड़, बकरी, ऊंट और गाय। ऊंट का जिक्र सबसे पहले आना चाहिए, क्यों, मैंने आपको ये बात बताई थी कि अनआम जो है नून आयन मीम से है ना, और ऊंट को असल में कहते हैं, और फिर ऊंट अरबों के यहां ज्यादा था, लेकिन ये तीन जानवर भी इसके अंदर जो है वो शामिल किए जाते हैं, और ये आठ बन जाते हैं। आठ कैसे, चार मुजक्कर हैं और चार जो है वो मुअन्नस हैं। तो अल्लाह ताला बार बार ये बात बताते हैं कि ये जो अनआम हैं ये किसने बनाए, ये मैंने बनाए, और किसके लिए बनाए, मैंने ए इंसान तुम्हारे लिए बनाए। और आप देख लें कि ये अनआम जो हैं इसके लिए दलील है सूरत अल अनाम, और सूरत अल अनाम की आयत नंबर है 143, समानियता अजवाज मिनत दान इसनैनी व मिनल माज इसनैन, है ना। और इसी तरह फिर आप देखें कि इससे अगली आयत में है व मिनल इबिल इसनैनी व मिनल बकर इसनैन, ठीक है ना। तो ये दलील है, तो तुम्हारे लिए क्या किया कि हमने जानवरों को बनाया। अच्छा, जानवरों को बनाने के फवायद और मकासिद क्या है, नंबर एक ये तरकबू मिनहा, क्या कहा कि तुम इन पर जो है वो सवारी करो, तो राकेबा यरकबू इसके मानी क्या होते हैं, सवार होना। तो अब आप देख लीजिए कि जानवर जो है अहले मक्का भी और हर दौर का इंसान जो है वो इनसे फायदा उठाता है, कैसे फायदा उठाता है कि उन पर सवारी करता है। ऊंट को देख लें और जानवरों को देख लें तो इस पर जो है वो सवारी की जाती है। तो सबसे पहले यहां पर जो है वो सवारी का जिक्र किया जा रहा है। और आप देख लें बहुत से इलाके ऐसे हैं पहाड़ी इलाके कि जहां पर जो है क्या किया जाता है कि वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन ये जानवर ही हैं जो कि जाते हैं। और वैसे तो नाम से मुराद ये जानवर लिए जाते हैं, लेकिन इसको अगर आम पे इसका आप इतलाक कर दें, बिलमुंग तो यही जानवर लिए जाते हैं, लेकिन आम अगर इसका आप इतलाक करें तो घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ये सब चीजें जो हैं वो इसके लिए काम आती हैं। वह मिनहा ताकुलून, और इसमें से तुम खाते भी हो। तो अब क्या बात पता चली कि सिर्फ ये नहीं कि सवारी जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि गजाई जरूरतें भी तुम्हारी पूरी होती हैं। और आप देख लीजिए के सफर में हैं अरब के लोग और ऊंट पर बैठकर सफर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने उनका जो है वो खाने का इंतजाम भी है किया हुआ है। और गजाई जरूरतें क्या हैं, मसलन इनसे दूध लेना, फिर दूध में से बलाई, मक्खन, पनीर, घी, लस्सी वगैरह है ना। फिर क्या है कि गोश्त, गोश्त खाया जाता है, हत्ता के हड्डियों से भी रस निकलता है, आप सूप बनाती हैं उससे। और क्या है कि हड्डियों से भी चीजें बनती हैं, खाल है तो खाल से क्या है, टेंट बनते हैं, और ये बेल्ट है, और ये जैकेट्स हैं, जूते बनते हैं, बहुत सी चीजें बनती हैं। हत्ता के ये जो जानवरों की ये जो आंत है, आंतें, इससे भी जो है ये जो क्या बनता है, ये जो स्टिचेस, ये जो ऑपरेशन किए जाते हैं ना, तो ऑपरेशन का जो धागा है वो इनसे बनाया जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते ना, मुख्तलिफ किस्म के जैसे धागे हैं तो जिस्म की मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल करके उनसे बनाए जाते हैं। और फिर इनकी ऊन है, ऊन से क्या बनता है, गद्दों में भी, स्वेटर भी, जैकेट भी। तो बहरहाल क्या करना चाहिए, इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि तुम खाते हो, तुम इनका इस्तेमाल करते हो, वलकुम फीहा मुनाफे हो, और इसमें तुम्हारे लिए मुनाफे हैं। अब मुनाफे कह के ना तरकबू भी इसमें आ गया और ताकुलून भी आ गया, और ये बहुत सी बातें, और आप इसकी एक फहरिस्त बनाएं कि और क्या क्या करते हैं, कि खेती चलाना, कुएं से पानी निकालना, फिर जो है बालों से कपड़े तैयार करना, इनके मरने के बाद इनकी हड्डियां, दांत, खालों का इस्तेमाल करना है ना। और जानवर क्या करते हैं, जानवर बाज़ औक़ात बोल पड़ते हैं, चोर आता है, पता चल जाता है जानवरों के बोलने से, क्योंकि जानवर आमतौर पर बोलते नहीं है, है ना। और क्या, दूध लेना चाहते हैं और बछड़ा गाय के नीचे डाला और फिर बछड़े को हटा दिया, क्योंकि बछड़े ने जो ही मुंह लगाया गाय के थनों को तो दूध भर आए, थन भर आए, वैसे नहीं आ रहा था दूध। बहुत से फायदे हैं, तो गौर तो करो। वाले तब लहू अलैया हाजतन फी सुदूरिकुम, फिर फरमाया और ताकि तुम पहुंचो, तुम अपने मकसद को हासिल कर सको, अलैहा इन पर चढ़कर, अला जो है इनके ऊपर चढ़कर, हाजतन किसी काम तक, फी सुदूरिकुम जो तुम्हारे सीनों में है, सुदूर कुलूब के लिए आया है कि तुम्हारे दिलों के अंदर जो भी काम है। मसलन आपको तो खूब इसका अंदाजा होगा कि आप क्या करती हैं कि गाड़ी बाहर आपके गिराज में होती है और जो ही जरूरत पेश आती है आप फौरन गाड़ी स्टार्ट करती हैं और चल पड़ती हैं, है ना। क्या करती हैं, गाड़ी को स्टार्ट करती है और चल पड़ती है, कभी शॉपिंग करनी है, इयादत करनी है, ताजियत करनी है, बच्चों को स्कूल से लेना है, छोड़ना है, हॉस्पिटल जाना है, एयरपोर्ट जाना है, ढेरों काम है। तो आपकी सवारी तो गाड़ी है ना, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी सवारी जो है वो जानवर ही है। तो आप जिन गाड़ी ना हो अगर आपके पास, आप ड्राइवर नहीं है, गाड़ी पड़ी है, तो क्या नेमत का एहसास तो करें ना। तो यहां पे भी एहसास करवाया जा रहा है कि तुम्हारे दिल में तरह तरह की जरूरतें होती हैं और फौरन गाड़ी उस अपनी सवारी पर बैठते हो जो जानवर है और तुम चल पड़ते हो, कभी सामान को ढोना है, कभी नकल मकानी करनी है, कभी जो है वो कोई और काम करना है। तो अल्लाह ताला ने बड़े बेहतरीन तुम्हें जो है वो सहराई सफीने दे दिए, सहरा के तफील सफरों में तुम इन पर सवारी करते हो, जिस तरह समंदर में कश्ती से सफर करते हैं ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। फिर फरमाया कि हाजतन फी सुदूरिकुम के बाद वा अलैहा, और इस पर वा अलल फुल्की तुहमलून। तो ये तो थे ना सहराई सवारियां, अब जो है वो समंदरी सवारियों का जिक्र किया जा रहा है। और समंदर की सवारियां क्या है, कश्तियां, और फुल्क जो है ये सुन जिन्स है ना, कि कश्तियों पर तुम जो है वो सवार होते हो। तो क्या मतलब है कि ये कश्तियों को भी तुम्हारा मुती किसने किया? समंदर जो है उसमें कश्ती कैसे चलती है? वरना आम चीजें समंदर में डूब जाती है ना। तो सफीना साजी अल्लाह ताला ने हजरत किसको सिखाई? नूह अलैहि सलाम को सिखाई, जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजकर। और फिर उसके बाद जो है ये सनत तरक्की करती चली गई, और फिर अहले मक्का भी समंदरी सफर इसे करते थे। तो ये सब कुछ बताने, दिखाने, समझाने का मकसद क्या है? वयुरीकुम आयाती, वो दिखाता है तुमको अपनी निशानियां। यूरीकुम का मतलब क्या है? कि वो तुम्हें दिखाता है, तुम्हें जो है वो मुतवज्जो करता है। वो अल्लाह जो है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ए इंसानों तुम गौर करो, अपनी निशानियां दिखाता चला जा रहा है। और ये सारी निशानियां कहां से शुरू हुई थी? आसमान, जमीन, रात, दिन, खुद इंसान, रिज्क तैयब। फिर उसके बाद जो है ये आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने साथ ही फिर जानवरों का जिक्र किया है ना। फिर उसके बाद क्या जिक्र किया कि जानवरों के क्या क्या फायदे हैं। फिर इसके साथ ही कश्तियों का जिक्र किया। वयुरीकुम आयातिही फअय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून, फअय्या आयातिल्लाहि तुनकिरून। फिर लोगों, अल्लाह की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे? फिर किन किन निशानियों का तुम इनकार करोगे? ये आयत का अंदाज कौन सा है? बिल्कुल ऐसे ही, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, ला बिशय मिन नेमति रब्बिना नुकज्जिब। तो इतनी वाजे, इतनी ज्यादा, इतनी आम निशानियां, आखिर तुम अल्लाह की कौन कौन सी निशानियां, कमालात, अजाइब उसका इनकार करोगे? ए अल्लाह, हम तेरी किसी भी निशानी का इनकार नहीं करते। ए अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और बेहतरीन शुक्र क्या है? अपने इस जिस्म को, इस जस्ते खाकी को अल्लाह के आगे मुती कर दें। सरे न्याज झुकाया तो फिर उठा ना सके, ऐसा सजदा कि बस फिर मौत जो है ना हमें सजदे की हालत में आए। अफालम यसीरु फिल अर्दी, क्या नहीं इन्होंने सैर की जमीन की, जमीन में? फयन जरूर, पस वो देखते, कई फकाना आकिबतुल्लजीना मिन कब्लिहिम, कैसा अंजाम हुआ उन लोगों का जो इनसे पहले थे। किन लोगों का जिक्र किया जा रहा है? जिन्होंने सजदा न किया, जिन्होंने इन निशानियों को देख कर अल्लाह को अपना माबूद ना बनाया, जिन्होंने शिर्क ना छोड़ा, जिन्होंने किज्ब ना छोड़ा, जिन्होंने जो है वो इफ्क ना छोड़ा, जो इसराफ करने से बाज ना आए। अल्लाह ताला कहते हैं कितनी ऐसी कौमें गुजरी, क्या ये इनको नहीं देखते कि उनका क्या अंजाम हुआ? और मुराद है कौमे आद, समूद, फिरौन, हामान, नमरूद और बहुत सी कौमें। कानू अक्सर मिनहुम, थे ज्यादा इनसे, तो उनकी जमीयत बहुत ज्यादा थी। वो लोग थोड़े नहीं थे, बहुत ज्यादा थे तादाद में। वाशद्दा कुवतन, और ज्यादा थे कुवत में। अशद्दा जो है, जैसे अगर उम्र किसी को मिले, जिंदगी मिले, तो जवानी के लिए भी अशद आया है ना। तो अब यहां पे अशद क्या है? कुवत के लिए आया है कि कुवत में बड़े सख्त थे, बड़े शदीद थे वो लोग, बड़े मजबूत जिस्म अल्लाह ने उनको जो थे वो अता किए थे। और यहां पे खास तौर पर इशारा है कौमे आद की तरफ और कौमे समूद की तरफ। और ये कौमें जो थी, बहुत अल्लाह ने इनको कुव्वत दी और जमीयत दी। खुद वो ये कहते थे कि हम जो हैं, हमारे जैसा जो है और कोई नहीं है, है ना। और वो उनके बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? जा मुसखरा बिलवाद, पहाड़ों को तराशना कोई आसान बात होती है? अब तो मशीनें काम करती हैं ना, लेकिन ये लोग जो थे ये पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। तो पहली कौमों की शानो शौकत बताई जा रही है, और शानो शौकत में से भी क्या बताया जा रहा है? उनके कद और कामत, जिस्मानी कुवत, फने तामीर, फने जरात। तो अहले मक्का वो तुमसे बहुत बढ़कर थे। वासारन फिल अर्दी, और निशानियां जमीन में, इसके क्या मानी है? कि वो बहुत सी निशानियां जमीन में छोड़ गए। निशानियों से मुराद ये है कि उनकी कारीगरी जो थी वो जमीन में नजर आती है कैसे खंडर बनकर, तबाही के आसार तो उनके खंडरों से भी देख सकते हैं। मसलन आप देखें ये जो म्यूजियम होते हैं इनमें ये चीजें क्यों रखी हुई होती हैं, ताकि पता चले कि पहले जमाने के लोग कैसी चीजें बनाते थे। अहरामे मिसर है ना, तो या आज के दौर में यहाँ पे ट्विन टावर है या और कोई अच्छी इमारत है ना, मोहनजोदड़ो जो है उसमें आप देखें तो ये सारे जो इमारतें, कारखाने, खेतियां, तो अब क्या है कि कभी वो आबाद थे और अब क्या है कि अब उनके खंडरों के आसार है। आसारन फिलर्दी, निशानियां हैं जमीन में। आसार का ताल्लुक ना अक्सर से है, मतलब क्या है कि आद और समूद ने जो निशान छोड़े अक्सरा, वो खुद बहुत ज्यादा थे तो उनके आसार भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अददी अक्सरियत जब होती है तो तमदनी आसार भी फिर बहुत ज्यादा होते हैं ना। समझ आ गई बात की, बहुत ज्यादा थे। फिर हुआ क्या, उन्होंने किया जब इनकार, फमा अग्न अनहुम मा कानू यक्सेबुन, फिर कुछ भी काम ना आया इनके जो थे वो कमाते। तो इनके इनकी ये जरात काश्त, इनकी ये जो थी वो फने तामीर, इनका कदोकामत, इनकी जिस्मानी कुवत, इनकी कारीगरी जो इतनी ज्यादा थी वो इनके कुछ भी काम ना आई। कब, जब उन्होंने इनकार किया और अल्लाह के अजाब का कोड़ा जो था वो इन पर बरसा। तो क्या बात बताना मकसूद है कि अहले मक्का तुम जो आज इनकार कर रहे हो तो तुम्हारा इनकार क्या तुम्हें अल्लाह की पकड़ से बचा सकता है। फलम्मा जाअतहुम रुसुलहुम, पस जब आए इनके पास इनके रसूल, बिल बय्यिनाति रोशन निशानियों के साथ, फरहू वो खुश हुए। क्या मतलब है, वो इतराने लगे। क्यों वो इतराए, क्योंकि कभी इंसान अपने हुसन पे इतराता है तो अकड़ अकड़ कर चलता है, कदर पे इतराता है तो फिर भी मचल मचल के चलता है। तो कभी इंसान इतराता है, बिमा इंदहुम मिनल इल्मी, तो इतराने लगे, फरेहा की बीमारी में मुब्तिला हो गए। यहां पे ये मजमूम सिफ्त के तौर पर आया है, जो कुछ इनके पास था इल्म में से। अब इनके पास खुद जो इल्म था ना उसी पर वो इतराने लगे। और पैगंबर क्या लेकर आए थे, बय्यिनात, और बय्यिनात में क्या था, अल इल्म, वही का इल्म है ना। तो अब इन्होंने क्या किया के बजाय इसके कि पैगंबर की तरफ रुजू करते, पैगंबर पर ईमान लाते, तो इन्होंने ये किया कि वही के इल्म की बजाय जो इनके पास जो थी मेथोडोलॉजी थी, जो जो भी जो जिनों भूतों की कहानियां थी या इश्क की कहानियां थी, जो हजारों उन्होंने अपने देवी और देवता बना रखे थे, बस उसी इल्म पर वो खुश हो गए है ना। जैसे अपने फलसफे या यूं कह लें कि साइंस, साइंस जैसे सुकरात, बुकरात या और बड़े बड़े जो लोग गुजरे हैं। अब हर दौर में कुरान तो रहा ही, हर दौर में हदायत तो रही, लेकिन लोगों ने क्या किया कि जो कुछ उनके अपने पास था ना उसी को जो है वो अहमियत दी, उसी को उन्होंने ज्यादा समझा। एक दौर में यूनानी फलसफा जो जो था ना इसका बड़ा जोर था, और एक स्कॉलर कहते हैं कि मैंने जब पढ़ा तो ऐसे लगता था कि मेरा दिल जो है वो बंद हो गया है। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे फलसफा नहीं पढ़ना, फिर छोड़कर वो दीन की तरफ आ गए। तो असल बात क्या है कि कुरान का इल्म मौजूद हो और इंसान इर्द गिर्द की कायनात और उलूम में तो तहकीक करे, PhD भी कर ले, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इल्म की तोहीन है। पहले भी बहुत से लोग थे, इल्म बहुत था उनके पास, और अपनी दुनिया की तिजारत और अपनी सनत और स्किल्स का जो इल्म था बड़े माहिर थे उसमें। और सूरत रूम से भी जो है ना उसमें भी इस बात का पता चलता है, क्या, या लमून जाहिरम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये लोग दुनिया की जाहिरी जिंदगी और इसके मुनाफे हासिल करने को तो जानते समझते हैं, मगर आखिरत जहां हमेशा रहना है उससे गाफिल हैं। तो आज का इंसान भी क्या है कि दुनिया के इल्म को, जाहिरी इल्म को इसने सब कुछ समझ लिया है। क्या, किस चीज का इल्म हासिल करना है, कि मैं खूबसूरत कैसे रहूं। हर शख्स ब्यूटिशियन बनना चाहता है, हर शख्स को मेहंदी लगानी आनी चाहिए, हर शख्स, हम चाहते हैं कपड़े भी मुझे सीने आने चाहिए, कोई हर्ज नहीं, जरूर सीखे, मैं ये नहीं कह रही, बड़ी अच्छी बात है, औरत को ये फन आना चाहिए। हर शख्स जो है पकाने में भी मास्टर बनना चाहता है, है ना, फिर गाड़ी चलाना, फिर पढ़ाई करना, फिर साइंस भी चाहिए, आर्ट्स भी चाहिए, बहुत से लोग, हर एक में हम महारत चाहते हैं, नहीं चाहते तो कुरान में महारत नहीं चाहते। तो उस दौर के लोगों की भी ये बीमारी थी कि पैगंबर रोशन निशानियों के साथ आया, मौजे भी थे, किताबें भी थी पैगंबरों के पास, और वो खुश हुए जो कुछ उनके पास था, जो जहालत का इल्म और शिर्क का इल्म और रस्म और रवाज को जिंदा करने का इल्म, वहां का बेहिमा कानू बेही यस्ताजेउन, और घेर लिया, और घेर लिया इसने, किसने, अजाब ने, बेहिम इनको, बेहिम इनके साथ, यानी जो कुछ इनके पास था ना, इनकी स्किल्स भी और इनको भी, इनको घेर लिया अजाब ने। और आपको पता ही है कि हाका ये घेरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चार लफ्ज हैं जो अल्लाह ताला ने घेरने के लिए इस्तेमाल किए हैं, इसमें हाफा भी है, हफा, और अहाता भी है, और क्या है, हाका। तो यहां पे क्या है, ये चौथा दर्जा है, आखिरी दर्जा, कि किसी चीज का किसी चीज पर नाजिल होना, उसको आ घेरना, मुसीबत आफत या अजाब का इस तरह नाजिल होना कि जिससे वो शख्स जो है ना वो घिर जाए, उसका घेराव हो जाए, क्योंकि अहाता दीवार से किया जाता है ना, लेकिन ये क्या है, अजाब ने आकर अहाता कर लिया, चिमट गया उनके साथ, वहां का बहम, और इसने घेर लिया इनको इनकी स्किल्स के साथ, माकानू बही, जो थे इनकी पास, जो कुछ भी इनके पास था ना, वो इतरा रहे थे, कोई इल्म पे इतराता है, कोई दौलत पे, कोई तिजारत पे, कोई बच्चों पे, कोई दुनिया की शान शौकत पे, तो ये उस्ताद उनको मजाक उड़ाते थे, लेकिन अल्लाह का अजाब ऐसा आया कि चिमट गया इनके साथ, फलम्मा राउ, फिर जब देखा उन्होंने बासाना हमारा अजाब, कालू, तो उन्होंने कहा आमन्ना बिल्लाही वाहदहू, हम ईमान लाए अल्लाह पर, वो एक है। तो अजाब देखा, और जू ही अजाब देखा तो उसके बाद जो है वो अल्लाह पर ईमान ले आए। मुआयना अजाब के बाद जो कौम ईमान लाती है तो उसका अजाब उसे फायदा नहीं देता, बजुज एक कौम के, वो कौन सी कौम थी, यूनस अलैहिस्सलाम की कौम, और वो भी क्या था कि यूनस अलैहिस्सलाम से गलती हो गई थी कि अल्लाह की इजाजत के बगैर उन्हें हिजरत कर ली थी। और दलील दें कि अजाब देखा और ईमान लाया, फिरौन, अमनतु बिरब्बे मूसा व हारून, और उसके ईमान ने उसको कुछ भी नफा ना दिया। तो हदीस भी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हदीस भी आप याद कर सकती हैं कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त से पहले पहले कबूल करते हैं जिस वक्त नज़ाए रूह और गरगरा मौत सामने आ जाए। तो गरगरा मौत से पहले पहले अल्लाह ताला बंदे की तौबा जो है वो कबूल करते हैं, और जब किसी पर गरगरे की कैफियत तारी हो जाए, गरगरा कहते हैं जब इंसान खींच खींच कर सांस लेता है, दुनिया से ताल्लुक कट जाता है, आखरत से जुड़ जाता है, फरिश्ता नजर आ रहा होता है, जान निकल रही होती है, उस वक्त अगर इंसान तौबा करता है तो उस वक्त की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। तो इन्होंने भी अजाब देखा और कहा कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, वाहदहू, वो एक है, वह कफरना, और हम मुनकिर हुए, बिमा कुन्ना बेही मुशरिकीन, इसके साथ थे जो हम उसके साथ शरीक बनाते, तो हम जो शिर्क करते थे हम अब उससे जो है वो इनकार करते हैं। फलम यकू यनफाहुम, पस नहीं था कि नफा दिया इनको, यकू जो है इसका रूट क्या है, काफ व नून, अब ये याद हो जाना चाहिए, यही काफ व नून जो है ये कायनात के लिए भी आता है, यही कुन है, यही काना है, यही यकूनू है, यही यकूनूनू है ना। तो बहरहाल, फलम यकू, पस ना था, यनफाहुम के नफा देता इनको, ईमानुहुम इनका ईमान, लम्मा राउ बासना, जब देखा उन्होंने हमारा अजाब, सुन्नत अल्लाह, दस्तूर अल्लाह का, सीन नून नून, कायदा तरीका सुन्नत, तो सुन्नत अल्लाह ही, दस्तूर अल्लाह का, मामूल अल्लाह का है, अल्लती, वो जो, कद खलत फी इबादही, बेशक खलत गुजरा आया, चला आया, खलत बराबर चला आ रहा है, फी इबादही, इसके बंदों के बारे में। तो अल्लाह का मामूल क्या है कि अजाब देखने के बाद तौबा और ईमान मकबूल नहीं है। तो तौबा और ईमान जो है वो कब काबिले कबूल है, जब लोग जो हैं आम जिंदगी में हों और ईमान लाएं। तो ईमान बिल गैब मतलूब है, बिल गैब, बिन देखा, तो मुशायदा करके काफिर देहरिये मुशरिक भी अगर ईमान ले आए तो ईमान लाना जो है वो बेसूद है। वखसिरहु नालिकल काफिरून, और वहां काफिर घाटे में पड़ गए, फिर वहां काफिर कैसे थे, नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गए। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि अब हम दुनिया की जिंदगी में हैं और हम जो ये फलसफा, साइंस, कानून और अपने जो दुनियावी उलूम हैं और ये जो नावल हैं, है ना, और अपनी जो हमारी मेथोडोलॉजी है और बहुत से उलूम हैं, इनके पीछे जो हम भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम दुनियावी उलूम हासिल ना करें, क्योंकि इस्लाम जो है दीन और दुनिया को अलग नहीं करता। दुनिया का इल्म भी हासिल करें, लेकिन उस इल्म को सवारी बनाएं जिस पर हम खुद सवार हो जाएं। वो इल्म हमें ढाना दे कि हम उसी के हो जाएं, नहीं, उसको हम मुती करें, उस पर सवार होकर फिर उस पर बैठकर, उस घोड़े पर बैठकर आखिरत की तैयारी करें, आखिरत कमाएं। लेकिन अफसोस कि उस घोड़े को मुती करने के लिए कुरान का इल्म हासिल करना जरूरी है, कुरान मजीद और फिर सीरत का, सुन्नत का इल्म हासिल करना जरूरी है। और आज का मुसलमान इसमें बहुत पीछे है। कुरान में ओ गौतजन, ए मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रत किरदार। तो असल में हमारे जो किरदार में कमी है, और ये कमी जो है इसका अजाला कैसे हो सकता है, जब हम जो है क्या करेंगे कि हम जो है वो कुरान का इल्म हासिल करेंगे। ये था सूरत गाफिर, सूरत अलमोमिन का इख्तिताम, आगाज कैसे था, हामीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम। आगाज भी किससे था, अजीज और अलीम ने किताब को नाजिल किया जो गाफिर ज़म्बी है, वकाबिल तौब है और शदीदिल इकाब, ज़िद तौल, ला इलाहा इल्लहु इलैहिल मसीर। आगाज जिससे था, इख्तिताम भी उसी पर है। तो बात क्या है, एक अल्लाह की इबादत करना, आखरत की तैयारी करना और कुरान को अपनी जिंदगी का ओढ़ना और बिछोना बनाना। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों में बढ़ाए और इस्तकामत दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।